डॉक्टर डोनाल्ड फाउलर, ओल्ड टेस्टामेंट पृष्ठभूमि। व्याख्यान 20, असीरिया की मृत्यु। 2024 डॉन फाउलर और टेड हिल्डेब्रांट। यह पुराने नियम की पृष्ठभूमि पर अपने शिक्षण में डॉक्टर डॉन फाउलर हैं। यह सत्र 20 है, असीरिया का निधन। मुझे महान शिकागो बियर फुटबॉल कोच माइक डिटका की एक कहावत याद है, जिन्होंने निकेल को मैनहोल कवर की तरह फेंकने के बारे में कुछ कहा था। मैंने इसे एक तरह से एक कहावत में बदल दिया जिसका मैं बहुत उपयोग करता हूँ। जब आप इन साम्राज्यों से गुजर रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम 40,000 फीट से ऐसा कर रहे हैं। पृथ्वी को देखने पर ऐसा लगता है जैसे हम वास्तव में चंद्रमा पर हैं। हम इससे कितने दूर हैं? लेकिन पुराने नियम के अध्ययनों में आप जो करते हैं वह यह है कि आप सदियों को इधर उधर फेंक देते हैं। आप शतकों को ऐसे इधर उधर फेंक देते हैं जैसे वे निकेल हों। हम उन सदियों के बारे में बात कर रहे हैं जिनसे हम निपट रहे हैं, और हम केवल कुछ छोटी या कुछ नहीं छोटी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम बस कुछ चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और यह पुराने नियम के साथ समस्या है या समस्याओं में से एक है, क्योंकि यह बहुत सारे क्षेत्र को कवर करता है। हे भगवान, इसके साथ न्याय करना लगभग असंभव है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने मुझे कितने क्रेडिट घंटे दिए। सैद्धांतिक रूप से मुझे और अधिक की आवश्यकता होगी, तो हम यहीं पर हैं। लेकिन हम इस वीडियो में असीरियन साम्राज्य को भुगतान करने जा रहे हैं और संभवतः नव बेबीलोनियन साम्राज्य की शुरुआत करेंगे। तो आइए अपना ध्यान वापस सन्हेरीब की ओर मोड़े। सन्हेरीब को पश्चिम में विद्रोह का सामना करना पड़ा, और इस कारण वह बाइबल के पन्नों में प्रसिद्ध हो गया। इसलिए पश्चिम में वह दक्षिण में आया और हड़पने वाले मेरेडित बालादान को हटा दिया, जिसके बारे में हमने बात की थी। और फिर हम इस अभियान को पश्चिम की ओर देखने के लिए तैयार हैं, जिसने बहुत विवाद पैदा किया है। और इसका कारण कुछ हद तक यह है कि बाइबल सन्हेरीब के अभियान को दर्ज करती है, और फिर हमारे पास सन्हेरीब के अभियान का विवरण है। वे एक दूसरे से थोड़े अलग हैं, जिससे यह जानना मुश्किल हो जाता है कि दक्षिणी राज्य यहूदा के खिलाफ उसके अभियान के इन दो खातों को कैसे जोड़ा जाए। इससे पहले हिजकियाह को सरगोन के खिलाफ इस विद्रोह में शामिल होने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने समझदारी से इनकार कर दिया था। अब यशायाह की परिषद के खिलाफ वह मिस्र में सोर के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हो गया, जिसमें बायब्लोस, अरपाद, मुआब, एदोम, अम्मोन और अश्कलोन शामिल थे। खैर, हमने वहां बहुत सारे नाम सूचीबद्ध किए हैं, लेकिन केवल कुछ ही राज्य, उनमें से ज्यादातर सिर्फ शहर हैं। इसलिए यह कोई विशेष प्रभावशाली गठबंधन नहीं था। कोई भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता कि हिजकियाह के दिमाग में क्या चल रहा था। असीरियन वास्तव में कभी पराजित नहीं हुए थे, और वास्तव में वे शायद ही कभी कोई लड़ाई हारे थे। मेरा मतलब है, उन्होंने कुछ हारे, लेकिन जब वे एक लड़ाई हार गए तो यह उल्लेखनीय था, उन्हें हराना तो दूर की बात है। तो इसके कारण आप स्वयं को यह कहते हुए पाते हैं, हिजकियाह क्या सोच रहा था। अब यशायाह एक महान राजा था। जब आप मानचित्र को देखते हैं तो आप जानते हैं मैं पहले पन्ने पर शीर्षकों को पढ़ने की कोशिश की गलती के बारे में बात करता रहता हूँ, लेकिन एकमात्र अनुकूल शीर्षक जो मैं देख सकता हूँ वह यह है कि असीरियन राजा कम सैन्य अभियान कर रहे थे। शायद वे कम सैन्य अभियान चला रहे थे क्योंकि कम विद्रोह थे, लेकिन मैं आपको किसी सार्थक तरीके से बताने में असमर्थ हूँ। मैं अपने दिमाग से कुछ निकालने की कोशिश करने में असमर्थ हूँ जो यह समझा सके कि हिजकियाह विद्रोह क्यों करेगा। उसके पास इतनी स्वतंत्रता है कि वह इतना होशियार होता कि बस यह देखने के लिए इंतजार करता कि क्या असीरियन साम्राज्य ध्वस्त हो जाएगा, लेकिन इसके बजाय उसे प्रलोभन दिया गया। वह प्रलोभन के आगे झुक गया और उसने विद्रोह कर दिया, और जैसा कि वे कहते हैं बाकी इतिहास है। तो यह गठबंधन और वैसे यह प्रभावशाली लग सकता है जब आपने मिस्र को अपने पक्ष में कर लिया है, लेकिन यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा यशायाह ने कहा था। मिस्र एक नरकट की तरह है, आप जानते हैं, एक तेज लकड़ी का नरकट जो नील क्षेत्र में उगता है। यदि आप अपना हाथ ईख पर रखते हैं और झुकते हैं तो यह सीधे आपके हाथ में छेद कर देगा। तो मिस्र कुछ ऐसा दिख सकता है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, लेकिन यशायाह ने उसे चेतावनी दी कि यह बस आपको छेद देगा, और निश्चित रूप से वही हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि मैं हिजकियाह के बारे में जो कह सकता हूँ वही हम में से बाकी लोगों के बारे में भी कह सकता हूँ। उसके पास इतनी स्वतंत्रता है कि वह इतना होशियार होता कि बस यह देखने के लिए इंतजार करता कि क्या असीरियन साम्राज्य ध्वस्त हो जाएगा, लेकिन इसके बजाय उसे प्रलोभन दिया गया। वह प्रलोभन के आगे झुक गया और उसने विद्रोह कर दिया, और जैसा कि वे कहते हैं बाकी इतिहास है। तो यह गठबंधन और वैसे यह प्रभावशाली लग सकता है जब आपने मिस्र को अपने पक्ष में कर लिया है, लेकिन यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा यशायाह ने कहा था। मिस्र एक नरकट की तरह है, आप जानते हैं, एक तेज लकड़ी का नरकट जो नील क्षेत्र। आप धर्मात्मा और मूर्ख हो सकते हैं। यह सचमुच मूर्खतापूर्ण कदम था। इसलिए वह विद्रोह करता है, और जब पादी जो एक्रोन का राजा है, एक्रोन उन पलिश्ती शहरों में से एक है, जब पादी ने गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया तो हिजकियाह ने उसे हटा दिया। तो आइए देखें कि क्या मैं वहां तक पहुंच सकता हूं जहां यह है। ठीक है, तो यहां है, एक्रोन यहां हमारे मानचित्र पर नहीं है आश्चर्यजनक रूप से, लेकिन एक्रोन इस तरह से इस सामान्य क्षेत्र में नीचे होगा, और इसलिए हिजकियाह इस अपेक्षाकृत महत्वहीन राजा को मजबूर करने की कोशिश करता है। वह उसे गठबंधन में शामिल होने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है, और इसलिए पोती ने शामिल होने से इनकार कर दिया, और इसलिए हिजकियाह ने उसे हटा दिया। और यह वह घटना प्रतीत हुई जो सन्हेरीब को पश्चिम में ले आई। हालांकि टायर के गिरने के बाद हिजकियाह प्रतिरोध चुनने में लगभग अकेला था। तो मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ, यहाँ टायर है, और इसलिए टायर इस विद्रोह में भाग लेने वालों में से एक था, और इसलिए हमारे पास यह गठबंधन था। यह मुझे कुछ स्टंट की याद दिलाता है जो हमने तब किए थे जब मैं हाई स्कूल का बच्चा था, और आप जानते हैं, आप और आपके दोस्त आप शरारत करने जा रहे हैं, और फिर आप शरारत करना शुरू कर देते हैं, और फिर कुछ होता है और आप देखते हैं चारों ओर, और शरारत करने का आपका विचार ऐसा है कि आप अकेले हैं और अन्य सभी शरारती लोग भाग गए हैं। खैर, यहाँ वही हुआ। जब यह गठबंधन शुरू हुआ तो वहाँ कई शहर थे, और जैसे ही टायर गिरा मिस्रवासियों को छोड़कर बाकी सभी बाहर निकल गए। बेशक मिस्रवासी वे मिस्रवासी नहीं हैं जिन्हें हम अतीत से जानते हैं, वे उतने मजबूत और शक्तिशाली नहीं हैं। तो संक्षेप में हिजकियाह लगभग तुरंत ही खुद को लौकिक चट्टान और एक कठिन जगह के बीच पाता है। इसलिए वह अपनी सेना को पश्चिम में ले आया, और हिजकियाह लगभग अकेला था। शायद मैदान में मिस्रियों को हराने के बाद सन्हेरीब फिर पूर्व की ओर चला गया। तो यहाँ मैं आपको कुछ ऐसा वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूँ जो थोड़ा भ्रमित करने वाला है, लेकिन यह इस प्रकार है। हमें इस बात का अपेक्षाकृत अच्छा अंदाजा है कि उसने अपनी सेना को कैसे आगे बढ़ाया होगा। उसने अपनी सेना को इस तरह से स्थानांतरित नहीं किया होगा, लेकिन जब तक उसने सोर पर कब्जा नहीं कर लिया तब तक उसने अपनी सेना को यहाँ पर स्थानांतरित कर दिया। लेकिन शायद असीरियन सेना का मुख्य दल ने शायद इसी तरह यात्रा की और फिर इसी तरह दक्षिण की ओर अपना रास्ता बनाया और फिर यहीं आ गया। अब आप इस मानचित्र से नहीं बता सकते क्योंकि यह बहुत भौगोलिक नहीं है, लेकिन एक पर्वत श्रृंखला है जो इसी तरह चलती है। और इसलिए यह इस बिंदु पर था कि सन्हेरीब, क्योंकि वह इसराइल को हराने जा रहा था या उसे हराने की कोशिश कर रहा था, एक विकल्प चुनता है। क्या वह अपना मुख्य भाग इस प्रकार भेजता है क्योंकि वहां एक कटक मार्ग है जो उत्तर दक्षिण तक चलता है। अंतर्राज्यीय 80 के बारे में न सोचने का प्रयास करें, लेकिन एक रिज मार्ग है जो उत्तर दक्षिण तक चलता है। क्या सन्हेरीब ने अपनी सेना को विभाजित किया या अपनी मुख्य सेना को इस तरह भेजा, या क्या उसने अपनी सेना का एक भाग इसी तरह भेजा और अपनी मुख्य सेना भी इसी तरह तट के नीचे भेजी? खैर, अभिलेखों से हम जो जानते हैं वह यह है कि उसने एलटेका नामक स्थान पर तट पर मिस्रियों के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। तो यह यही था, और बहुत संभव है कि जब सन्हेरीब ने आक्रमण किया तो उसने जो किया वह इस तरह से अपनी सेना को दक्षिण की ओर लाया, अपनी सेना का एक हिस्सा यरूशलेम को घेरने के लिए भेजा, यहाँ इसे अपने कमांडर रबशाके के अधीन कर दिया, और फिर उसने वह स्वयं अपनी सेना के साथ यहाँ गया और मिस्रियों को हराया। खैर, अब गठबंधन में सभी लोग चले गए हैं और हिजकिय्याह अकेला खड़ा है। पूरी असीरियन सेना यहाँ है और वे इस तरह यरूशलेम तक अपना रास्ता बनाने जा रहे हैं। जेरूसलम तक कई अलग अलग रास्तों से पहुंचा जा सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ इस क्षेत्र में कहीं हैं, तो आप इस तरह उत्तर की ओर आकर जेरूसलम पहुंचेंगे, जो यही है, और फिर वहाँ एक पहाड़ी है जिसे बीट होरोन रिज कहा जाता है, जिसके बाद तुम आगे बढ़ोगे और फिर यरूशलेम में आओगे। तो रबशाके के पास यरूशलेम को घेरने वाली सन्हेरीब की सेना का हिस्सा है, और यहीं पर हम अध्याय 6 श्लोक 36 में हिजकिय्याह के साथ विवरण में प्रवेश करते हैं। तो मैं यशायाह के वृत्तांत से आपको पढ़ने जा रहा हूँ। राजा हिजकिय्याह के 14वें वर्ष में अश्शूर के सन्हेरीब ने यहूदा के सब गढ़वाले नगरों पर चढ़ाई करके उन पर अधिकार कर लिया। वह जलवायु विरोधी था। वह हमें यह नहीं बताता कि हिजकिय्याह इसे स्वयं लाया था। वह बस हमें बताता है कि वह आया और उन्हें जब्त कर लिया। और इस प्रकार पद 2 में अश्शूर के राजा ने रबशाके को लाकीश से यरूशलेम को एक बड़ी सेना के साथ राजा हिजकिय्याह के पास भेजा, और वह फुलर के खेत की सड़क पर ऊपरी तालाब की नाली के पास खड़ा हो गया। तब हिजकिय्याह का पुत्र एलियाकीम जो राजघराने के काम पर या, और शेबा शेबना जो मंत्री था, और आसाप का पुत्र योआक जो इतिहास का लिखने वाला आया। तो इस लंबे भाषण में हिजकिय्याह यरूशलेम के अंदर है, यहीं रबशाके के पास सेना का एक बड़ा हिस्सा है, और रबशाके ने उससे बात करना शुरू कर दिया है, और इसलिए अब हमारे पास जो कुछ है वह पुराने नियम में सबसे दुर्लभ वस्तुओं में से एक है। हमारे पास एक विदेशी राजा का भाषण है जो यरूशलेम को घेर रहा है, और हमारे पास उसके भाषण का अभिलेख है। यह बिल्कुल आश्चर्यजनक है। हमारे पास यह सिर्फ यही नहीं बल्कि 2 किंग्स 18 और 19 में भी है। यह एक संक्षिप्त खाता है, इसलिए मुझे आशा है कि मैं आपको बोर नहीं करूंगा, लेकिन मैं उनके भाषण का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ने के लिए समय निकालूंगा। सो रबशाके ने उनसे कहा, और वे भीतर थे, हिजकिय्याह से कहो, महान राजा अश्शूर का राजा यूं कहता है, तुम्हें यह किस बात का भरोसा है? मैं कहता हूं कि युद्ध के लिए आपकी सलाह और ताकत केवल खोखले शब्द हैं। अब तू किस पर भरोसा रखता है कि तूने मुझसे बलवा किया? दूसरे शब्दों में इस चरण तक हिजकिय्याह अकेला है। तो रबशाके उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अपने सभी सहयोगियों को बुलाओ। खैर, वहां कोई नहीं है। सो देख, तू इस कुचले हुए नरकट की लाठी अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है, जिस पर यदि कोई टेक लगाए तो वह उसके हाथ में लगकर छिद जाएगी। मिस्र का राजा फिरौन भी वैसा ही है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो। खैर वह पहले ही हार चुका है। सो यदि तू मुझसे कहे कि हमें अबके परमेश्वर पर भरोसा है, तो क्या वह वही नहीं है जिसके ऊंचे स्थानों और वेदियों को हिजकियाह ने छीन लिया है और यहूदा और यरूशलेम से कहा है, तुम इसी वेदी के सामने दंडवत करना। इसलिए अब आओ और मेरे स्वामी अश्शूर के राजा से मोल भाव करो, और यदि तुम उन पर सवार होने के लिए मनुष्य पा सको तो मैं तुम्हें 2000 घोड़े दूंगा। वह हिजकियाह पर ताना मार रहा है क्योंकि असीरियन सेना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है और हिजकियाह अकेला है। तो फिर तुम मेरे स्वामी के छोटे से छोटे सेवकों में से एक अधिकारी को कैसे हतोत्साहित कर सकते हो और रथों और घुड़सवारों के लिए मिस्र पर भरोसा कैसे कर सकते हो? अब मैं ये पेट की अनुमति के बिना इस भूमि को नष्ट करने के लिए आया हूँ। ये पेट ने मुझसे कहा, इस देश पर चढ़ाई करके इसे नष्ट कर दे। खैर ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद में क्या चल रहा है, क्योंकि यह जो है यह प्रचार का मामला है। रबशा के प्रचार में लगे हुए हैं। यरूशलेम शहर के अंदर के लोग और विशेष रूप से दीवार पर मौजूद लोग उसके प्रचार को सुन सकते हैं, और इसलिए वह हिजकियाह को उसकी असंभव सैन्य दुर्दशा के बारे में ताना मार रहा है। इसे इस तरह से कहें तो युद्ध के सभी इतिहासों के अनुसार कोई भी कल्पना कर सकता है, हिजकियाह के पास कोई मौका नहीं है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हिजकियाह अश्शूरियों को सैन्य रूप से हरा सके। तो इसके साथ श्लोक 13 में रबशा के खड़ा हुआ और यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से चिल्लाया, वह सभी चीजों के बारे में हिब्रू जानता था और रबशाके की निंदात्मक वाणी को सुन रहा था। महान राजा, अश्शूर के राजा के शब्द सुनो। राजा यूं कहता है, हिजकियाह तुमको धोखा न देने पाए क्योंकि वह तुम्हें बचा न सकेगा। न हिजकियाह तुमको ये पेट पर यह कहकर भरोसा दिलाए कि यहोवा हमें निश्चय बचाएगा। यह नगर अश्शूर के राजा के हाथ में न दिया जाएगा। हिजकियाह की न सुनना, क्योंकि अश्शूर का राजा यूं कहता है, मुझसे मेल कर ले और मेरे पास निकलकर अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष खाओ और अपना अपना कुंड का जल पियो। जब तक मैं आकर तुम्हें तुम्हारी अपनी भूमि के समान किसी नए देश में न ले जाऊं। याद रखें कि सन्हेरीब ने 500,000 लोगों को निर्वासित किया था। सावधान रहो, कहीं हिजकियाह यह कहकर तुम्हें गुमराह न कर दे कि यहोवा हमें बचाएगा। और फिर वह एक प्रश्न पूछता है जिसका कोई उत्तर नहीं है जिसे आप दे सकें। क्या राष्ट्रों के देवताओं में से किसी ने अपने देश को अश्शूर के राजा के हाथ से बचाया है? हमात और अरपाद के देवता कहाँ हैं? सेफर वालिम के देवता कहाँ हैं? और उन्होंने शोमरोन अर्थात उत्तरी राज्य को मेरे हाथ से कब बचाया है? इन देशों के सब देवताओं में से किसने अबके देश को मेरे हाथ से बचाया कि ये पेट यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएं? खैर सन्हेरीब जो कर रहा है वह बहुत शक्तिशाली प्रचार कर रहा है, क्योंकि वह हिजकियाह और यहूदियों से कह रहा है, आपको क्यों लगता है कि आपके पास एक मौका है? एक पूरी सदी के लिए मेरे साथ वापस चलो, डेढ़ सदी पीछे जाइए। हमारे और हमारे देवताओं के विरुद्ध कौन कभी सफल हुआ है? क्या इतने समय में किसी ईश्वर ने कभी अपने लोगों को हमसे बचाया है? हिजकियाह इसका उत्तर जानता है। उत्तर कोई नहीं है। एक भी राज्य नहीं, एक भी शहर नहीं, एक भी सेना नहीं, किसी ने भी वास्तव में अश्शूरियों को नहीं हराया था। अब आप कह सकते हैं, ठीक है, अहाब करकर में जीत गया। खैर हम लड़ाई और युद्ध के बीच अंतर कर रहे हैं। अश्शूर के विरुद्ध कभी भी किसी ने युद्ध नहीं जीता है। तो रबशा के दीवारों के बाहर हिजकियाह को ताना मार रहा है और हिजकियाह की अपनी मूर्खता ने उसे इस संकट में डाल दिया है। तो पाठ हमें श्लोक 24 में बताता है, शहर की दीवार के अंदर वे सभी बिल्कुल चुप थे, कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि कहने को कुछ है ही नहीं। खैर, जब वे शहर की दीवार के अंदर आते हैं तो हम अध्याय 37 में पढ़ते हैं कि जब हिजकियाह ने यह सुना तो उसने अपने कपड़े फाड़ दिए, टाट से खुद को ढक लिया और येपेत के घर में घुस गया। तब उसने एलियाकीम को, जो राजघराने के काम पर या और शेबना मंत्री और याजकों के पुर्नियों को टाट ओढ़कर आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता के पास भेजा और उन्होंने उससे कहा, हिजकियाह यों कहता है, आज का दिन संकट और घुड़का और तिरस्कार का दिन है, क्योंकि बच्चे तो जन्मे परंतु माता उन्हें जन्म नहीं दे सकती। कदाचित ये पेट तेरा परमेश्वर रबशाके की बातें सुनेगा, जिसे उसके स्वामी अश्शूर के राजा ने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है, और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी हैं उनको डांटेगा, इसलिए जो बचे हुए हैं उनके लिथे प्रार्थना करो। बाएं। तब हिजकियाह के सेवक यशायाह के पास आए और यशायाह ने हिजकियाह से कहा, तू अबके स्वामी से यूं कहना, यहोवा यूं कहता है, यह अद्भुत है, आप जानते हैं सेनाएं बाहर हैं, निंदा एक फुट गहरी है, परंतु यशायाह कहता है, यहोवा यूं कहता है, एक भविष्यवक्ता के अलौकिक शब्द, जो बातें तूने सुनी हैं जिनके द्वारा अश्शूर के राजा के सेवक मेरी निंदा करते हैं, उनके कारण मत डर। देख, मैं उसमें आत्मा उत्पन्न करूंगा और वह अफवाह सुनकर अपने देश को लौट जाएगा, और मैं उसे उसी के देश में तलवार से मार डालूंगा। खैर, फिर यही हुआ। इस घटना के बाद रात के दौरान पाठ हमें बताता है कि प्रभु के दूत ने 185,000 अश्शूरियों को मार डाला। वह बहुत सारे मृत लोग हैं। मैं आपको सुझाव दूंगा कि 185,000 संभवतः 30,000 या 40,000 सैनिकों से अधिक नहीं है, और उस संख्या का बड़ा प्रतिशत रसद कर्मियों के बारे में है। यह बहुत कम संभावना है कि असीरियन सेना में 185,000 लोग थे, लेकिन रात के दौरान देवदूत सेना और पूरी रसद सहायता टीम दोनों को नष्ट कर देता है और सुबह कोई भी नहीं जागता। खैर, ठीक उसी तरह पहली बार असीरियन पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, और इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए हम देख सकते हैं कि भगवान ने अपने शहर यरूशलेम को बचाया है। हिजकियाह बाद में अश्शूरियों के सामने आत्मसमर्पण कर देगा, क्योंकि हिजकियाह राजनीतिक स्थिति को देखता है और ऐसा कुछ कहता है, भगवान ने दुश्मन सेना को नष्ट कर दिया है, लेकिन हर कोई जानता है कि असीरियन कैसे हैं, और इसमें उन्हें 3 साल लग सकते हैं, इसमें उन्हें 4 साल लग सकते हैं, लेकिन वे बस वापस आने वाले हैं, इसलिए अब आत्मसमर्पण करना और श्रद्धांजलि देना बेहतर है, इसके बजाय कि सेना वापस आए और मेरे शहर को नष्ट कर दे। इसलिए हिजकियाह ने भारी मात्रा में सोना और चांदी की प्रतिभाएं भेजी। वह उसे यह पूरी सूची भेजता है। यदि आप दस्तावेज पढ़ना चाहते हैं तो यह आपके लिए अंग्रेजी अनुवाद में उपलब्ध है, जिसमें हिजकियाह द्वारा भेजी गई हर चीज की सूची सूचीबद्ध है, यहाँ तक कि वह बंदी बना लेता है। हिजकियाह मंदिर के संगीतकारों को भेज देता है, वह अपनी बेटियों को भेज देता है, वह अपनी कुछ पत्नियों को भेज देता है, वह भारी मात्रा में चांदी और सोना भेज देता है, ताकि हिजकियाह, पूरी ईमानदारी से कहें तो, हिजकियाह वह श्रद्धांजलि भेजता है जो उसे मिलनी चाहिए थी यदि शहर पर कब्जा कर लिया गया होता तो भेजा जाता, लेकिन ऐसा करके वह अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की गारंटी दे सकता है, और अपने देश के लिए वह यह गारंटी दे सकता है कि असीरियन वापस नहीं आएंगे। श्रद्धांजलि स्वीकार करने से वह वापस नहीं आता। तो हम इस पूरी दिलचस्प कहानी का क्या मतलब निकाले, जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है? खैर, हम आपको बता सकते हैं कि यह 701 ईसा पूर्व में हुआ था और हम इसे जानते हैं। यशायाह ने लिखा, मैं उसमें अफवाह की आत्मा डालूंगा और वह अपने देश को लौट जाएगा और वहां उसकी हत्या कर दी जाएगी। इससे बहुत सारे विद्वानों में भ्रम पैदा हो गया है कि क्या हो रहा है, क्योंकि वास्तव में सन्हेरीब की हत्या कर दी गई है, लेकिन 689 तक उसकी हत्या नहीं की गई है। इसलिए इसने असीरियन काल के अधिक दिलचस्प प्रश्नों में से एक को जन्म दिया है, और प्रश्न यह है, क्या सन्हेरीब एक बार यरूशलेम के विरुद्ध आया था? हम जानते हैं कि वह 701 में आए थे। क्या वह 689 या 690 में दूसरी बार आए? ठीक है, यह शायद उत्तर देने योग्य नहीं है, परंतु यह आपको केवल यह बताने के लिए है कि जब यशायाह ने लिखा, तो मैं उसमें अफवाह की आत्मा डालूंगा और वह अपने देश को वापस चला जाएगा। सन्हेरीब को वास्तव में फांसी दिए जाने में 11 वर्ष और लगे, यानी 12 वर्ष और। तो इससे लोगों को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि शायद सन्हेरीब के केवल एक नहीं बल्कि दो अभियान थे। इसलिए सन्हेरीब बेबीलोन लौट आया और अंततः उसे मार दिया गया। यहाँ जो कुछ हुआ है उसके बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा जो मुझे लगता है कि उल्लेखनीय हैं। इनमें से पहला यह है कि परमेश्वर यरूशलेम को शत्रु से बचाता है। शहर को घेर लिया गया है, कोई बच नहीं सकता, कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन भगवान शहर को बचाता है, और हम सवाल पूछते हैं, वह ऐसा क्यों करता है? उसने पहले ऐसा नहीं किया, और वह ऐसा बाद में भी नहीं करता, तो वह यहाँ ऐसा क्यों कर रहा है? खैर, मैंने मंच पर सुना है कि इसका संबंध हिजकियाह की प्रार्थना से था, कि हिजकियाह एक धर्मी व्यक्ति था। खैर, वह मूर्ख हो सकता है, लेकिन वह एक धर्मी व्यक्ति था। लेकिन वास्तव में मुझे लगता है कि पाठ बिल्कुल स्पष्ट है कि भगवान ने रबशाके के अपवित्र अपमानजनक प्रचारात्मक बयानों के कारण यरूशलेम को बचाया। परमेश्वर ने यरूशलेम को इसलिए नहीं बचाया क्योंकि हिजकियाह बहुत धर्मी था। उसने यरूशलेम को इसलिए नहीं बचाया क्योंकि परमेश्वर यरूशलेम को गिरने नहीं दे सकता था, यरूशलेम को गिरने देने के लिए स्वयं को तैयार नहीं कर सकता था। उन्होंने यरूशलेम को आदर्श रूप से वितरित नहीं किया ताकि वह आने वाली सभी पीढ़ियों को यह संदेश दे सकें कि यदि आपके पास विश्वास है तो भगवान यही करेंगे। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को संदेश भेजा कि जब आप इज़राइल के ईश्वर की निंदा करते हैं तो इज़राइल के ईश्वर के पास आपको नष्ट करने की शक्ति है। दुर्भाग्य से ऐसा प्रतीत होता है कि इससे एक भयावह रूप से खराब धर्मशास्त्र का जन्म हुआ जिसे सिय्योन धर्मशास्त्र कहा जाता है। हम सिय्योन धर्मशास्त्र को जानते हैं। यह उन वाक्यांशों में सन्निहित है जिन्हें हम मीका और बाद में बेबीलोनियन काल में किताबों में पढ़ते हैं। सिय्योन धर्मशास्त्र इस आधार पर बनाया गया है कि यरूशलेम येपेत का घर है और वह यरूशलेम को कभी भी दुश्मन के हाथों गिरने नहीं देगा। सिय्योन धर्मशास्त्र यहूदी धर्म का एक निश्चित हिस्सा बन गया, और मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसकी गलत व्याख्या की गई थी। यानी वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे प्रतीत होते हैं कि चूंकि येपेत ने इस बार यरूशलेम को गिरने से बचाया था, तो येपेत हर समय यरूशलेम की ओर से ऐसा ही करने वाला था। उनके पास एक धर्मशास्त्र था जो यह तर्क देता था, यह भगवान का निवास स्थान है, यह वह स्थान है जहां मंदिर है, यह वह स्थान है जहां संदूक है, और परिणाम स्वरूप यह कभी गिर नहीं सकता या नष्ट नहीं हो सकता। शायद वह हिजकियाह की परेशानी का हिस्सा था। शायद हिजकियाह इस विचार के प्रभाव में था कि वह प्रभु के प्रति वफादार रहा है और प्रभु को उसके प्रति वफादार रहना होगा। लेकिन वास्तव में सिय्योन धर्मशास्त्र कैंसर था जिसने यरूशलेम के पतन तक उनके साथ ईश्वर की उपस्थिति की वास्तविकता को खा लिया, क्योंकि नव बेबीलोनियन काल की समय अवधि में बहुत बाद की तारीख में वे एक परिस्थिति में फिर से विद्रोह करेंगे। यहाँ की भयावह याद ताजा हो रही है, यह सोचकर कि विद्रोह करके वे भगवान के हाथ को नव बेबीलोनियन काल की समयावधि में उसी तरह से उन्हें छुड़ाने के लिए मजबूर करेंगे जैसे उन्होंने यही किया था। तो यशायाह 2 राजा 18:19 में यह बहुत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण कहानी हमें याद दिलाती है कि भूमि में इसराइल की उपस्थिति समाप्त हो सकती है। वास्तव में जब आप व्यवस्था विवरण में वापस जाते हैं और आप शाप पढ़ते हैं, तो भगवान व्यवस्था विवरण और लेविटिकस में उन शापों में सीधे तौर पर कहते हैं, वह सीधे तौर पर कहते हैं कि यदि तुम अवज्ञाकारी हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी भूमि से निष्कासित कर दूंगा। तो यह कहानी जो थोड़ी भ्रमित करने वाली है, क्योंकि हम आसानी से इसके कालक्रम और इस तरह की चीजों को दोबारा नहीं बना सकते हैं। यह कहानी अश्शूरियों और अन्य बाद के पाठकों को यह दिखाने के लिए एक कहानी है कि इसराइल का भगवान वास्तव में वह भगवान है जो है प्रभारी, और इसराइल केवल वही करता है जो भगवान करता है। क्षमा करें, अश्शूर केवल वही करता है जो इसराइल का भगवान उसे करने देता है। यशायाह ने परमेश्वर की ओर से लिखा, अश्शूर मेरी छड़ी है। इसका मतलब है कि भगवान दुनिया को यह सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि असीरिया दुनिया की पहली महाशक्ति हो सकती है, लेकिन यह इसराइल के भगवान के अधिकार और शक्ति के अधीन है। अब जहां तक हिजकियाह की बात है, दुर्भाग्य से हिजकियाह एक धर्मात्मा राजा और एक राजा दोनों है जो राज्य के मामलों को नियंत्रित करना चाहता है। तो यहां अश्शूरियों के विरुद्ध उसके विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? उसने वो सारी बातें खो दी जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि आप जाकर पढ़ सकते हैं। उसने 46 को भी खो दिया। सन्हेरीब ने हमें बताया कि उसने 46 दीवारों वाले शहरों पर कब्जा कर लिया। यह बहुत सारे यहूदी शहर हैं जिन्हें हिजकियाह ने खो दिया, 46 दीवार वाले शहर। सन्हेरीब हमें बताता है कि उसने 200,000 यहूदियों को बंदी बना लिया। तो व्यवहार में इसका मतलब यही है। तो मानचित्र पर बैंगनी क्षेत्र यहूदिया है। इसका मतलब हिजकियाह की मूर्खता के कारण सन्हेरीब के आक्रमण के परिणाम स्वरूप था, जो संभवतः इस विनाशकारी निर्णय के बाद आधे आकार का था। बाद की तारीख में हिजकियाह एक और आध्यात्मिक अविवेक करता है, क्योंकि बेबीलोन का राजा हिजकियाह के पास दूत भेजता है। इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। हिजकियाह यरूशलेम में मंदिर जाता है, मंदिर खोलता है और मेरोडाक बालादान के दूतों को दिखाता है। वह उन्हें मंदिर की संपत्ति दिखाता है। लगभग निश्चित रूप से हिजकियाह जो कर रहा था वह एक और गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा था, इस बार बेबीलोनियों के साथ। और निःसंदेह हिजकियाह को इसके लिए भी दोषी ठहराया गया है। इसलिए मुझे पता है कि यह कहना आसान और सरल लगता है, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊंगा, भगवान ने उन्हें चेतावनी दी थी कि आपके आसपास के सभी देशों की तरह एक राजा का मतलब है कि राजा को अंतर्राष्ट्रीयवादी नहीं होना चाहिए। 2 बार हिजकियाह ने गठबंधन बनाया है या गठबंधन बनाने की कोशिश की है। दोनों ही बार प्रलय हुई है। राजा को सैन्यवादी नहीं होना चाहिए, अर्थात उसे अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सेनाओं पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो हिजकियाह दुर्भाग्य से अपनी सारी रूढ़िवादिता के लिए, अपनी सारी भक्ति के लिए, हिजकियाह अन्य सभी राष्ट्रों की तरह एक राजा की तरह काम कर रहा है। ठीक है, इससे पहले कि मैं इसे जाने दूं, एक आखिरी बात, क्योंकि हमारे पास लाकीश शहर के पतन के संबंध में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। यदि आप देख सकते हैं कि मेरा कर्सर कहाँ इंगित कर रहा है, तो हम मारेशा नामक स्थान पर हैं, और यही वह क्षेत्र है जहाँ हमारा लाकीश शहर है। लाकीश हिजकियाह के इस समय में यरूशलेम का सबसे महत्वपूर्ण शहर है। लाकीश तटीय मैदान की रक्षा करता है, और यह हिजकियाह को शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि यह प्रतिबंध लगा सकता है। लाकीश इस सड़क पर यातायात पर रोक लगा सकता है, यह राजा के लिए राजस्व की गारंटी दे सकता है। लाकीश इस समय यरूशलेम का सबसे बड़ा नगर है। स्वाभाविक रूप से हिजकिय्याह ने लाकीश को घेर लिया था और इसलिए हमारे पास लाकीश की घेराबंदी दिखाने वाली एक तस्वीर है। मुझे यकीन नहीं है कि आपकी नजर इसमें से कितना देख सकती है, लेकिन यह युद्ध राहत का एक खंड है। सन्हेरीब ने इसे असीरिया में अपने महल में दर्ज किया। यहाँ एक जुडियन बैटलमेंट टावर है। टावर के शीर्ष पर हम एक यहूदी तीरंदाज को शूटिंग करते हुए देखते हैं। हम उन्हें अजीब सी दिखने वाली चीजें फेंकते हुए देखते हैं, जो थोड़ी थोड़ी सिगरेट जैसी या उसके जैसी कुछ दिखती हैं। ये वास्तव में डंठल के बंधे हुए टुकड़े और जलने योग्य चीजें हैं जिन्हें वे यहाँ फेंक रहे हैं, क्योंकि यह घेराबंदी का इंजन है। वे लाकिश की दीवारों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ असीरियन घेराबंदी इंजन है। क्या आप देख सकते हैं कि यह कैसा दिखता है? यहाँ पिटाई करने वाला राम है। पीटने वाला मेढ़ा युद्ध टॉवर पर हमला कर रहा है। वे घेराबंदी इंजन को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ यहूदी स्त्रियां बंधुवाई में जा रही हैं। यह सन्हेरीब के महल से लिया गया है, जिसने लाकीश पर कब्जा करने का जश्न मनाया था। तो हमारे पास यह तस्वीर उस बिंदु को दर्शाती है। हिजकिय्याह ने अपने साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शहर अश्शूरियों के हाथों खो दिया, और इसलिए सभी बातों पर विचार करने पर एक राजा जिसे सिंहासन ग्रहण करते समय एक मामूली रूप से मजबूत हाथ दिया जाता है, वह उन आदेशों के उल्लंघन के कारण बहुत कमजोर हो जाता है जो भगवान ने अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन नहीं बनाने के बारे में दिए थे। जहां तक सन्हेरीब की बात है, 689 में उसकी हत्या कर दी गई। उसकी हत्या दो बेटों ने की है जो उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं और खुद राजा बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, जब आप राज्यों में देखते हैं, जब आप हत्या करके हटाए गए राजाओं को देखते हैं, तो आप एक ऐसे साम्राज्य या राज्य को देख रहे होते हैं जिसमें परेशानियां होती हैं। इससे पहले कि हम अश्शूर साम्राज्य का अंत कर लें, अब ज्यादा दूर नहीं जाने वाला है, तो वह हमें एसरहद्दोन तक ले जाएगा। सन्हेरीब की उसके बेटों ने हत्या कर दी। एसरहद्दोन का बेटा राजा बनेगा, लेकिन वह स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं है। वह वास्तव में वफादार बेटा है। निर्वासन के बाद उन्होंने राजगद्दी हासिल की। जाहिर है उनका पहला कार्य बेबीलोन का पुनर्निर्माण करना था। इसलिए एशरहद्दोन के भाई, जो बड़े हैं और राजा बनना चाहते हैं, ने उसे निर्वासन में जाने के लिए मजबूर कर दिया है। अपने पिता की हत्या करने के बाद एसरहद्दोन निर्वासन से बाहर आता है। इन दो बेटों, मुझे कहना चाहिए, इन दोनों भाइयों को हराने और मारने में सफल होता है और अश्शूर का सिंहासन अपने लिए जीत लेता है। अपने 7वें वर्ष में उसने मिस्र पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। बेशक सर्वव्यापी न्यूबियन का मतलब है कि तिरहा का एक काले मिस्र के फिरौन का था, जो वास्तव में मिस्र के सुदूर दक्षिण से आया था। तिरहा का सर्वव्यापी है। वह कुछ समय के लिए मिस्रवासियों के लिए कांटा बना रहेगा। हालांकि अपने 10वें वर्ष में वह वापस लौटा और मेम्फिस पर विजय प्राप्त की। कई वर्षों के बाद तिरहा का द्वारा विद्रोह भड़काने के कारण उसने लौटने का प्रयास किया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो हम इसके बारे में क्या पढ़ सकते हैं? मुझे यकीन नहीं है कि हम इसे देख सकते हैं। यहाँ एसरहद्दोन का विस्तार है, और इसका मतलब यह है कि यह हल्का नीला वह क्षेत्र है जिस पर एसरहद्दोन ने विजय प्राप्त की थी। वह उत्तरी मिस्र या मिस्र की भाषा में निचले मिस्र को जीतने में सफल रहा, क्योंकि नील नदी उत्तर की ओर बहती है। इसलिए वह मेम्फिस पर कब्जा करने में सफल रहा। और सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए गुब्बारे को देखें। गुब्बारा ऐसा लगता है जैसे यह बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। वास्तव में आप यह सब देखते हैं और आपको लगता है कि मानव अस्तित्व के इस दुःस्वप्न को कभी भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि साम्राज्य लगातार बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। इसलिए एसरहद्दोन लंबे समय तक शासन नहीं करता है। यहाँ एक छोटा सा उदाहरण दिया गया है जो आपको दिखाता है कि कैसे उन्होंने चट्टान के इन भारी टुकड़ों को स्थानांतरित किया जिससे उनकी दुनिया बनी। उन्होंने पुली की एक प्रणाली विकसित की और उन्होंने उन्हें इन विशाल ब्लॉकों, या इस मामले में एक पंख वाले बैल के चारों ओर लपेट दिया, और वे इन विशाल बहुत भारी वस्तुओं को ब्लॉक और टैकल के माध्यम से स्थानांतरित कर सकते थे और उन्हें स्थानांतरित कर सकते थे और बड़ी संरचनाएं बना सकते थे। पिरामिडों के निर्माण के बारे में सुनकर मैंने बहुत सारी पौराणिक कथाएं पढ़ी हैं। लोग पिरामिडों के बारे में बात करते हैं क्योंकि पत्थर बहुत बड़े थे। उन्हें अवश्य ही बाह्य अंतरिक्ष से मदद मिली होगी, तो हम पिरामिडों से बहुत दूर नहीं हैं, लेकिन जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं, यह बाहरी स्थान नहीं हो सकता है। यह सिर्फ ब्लॉक और टैकल है, लेकिन वे बहुत बड़ी वस्तुओं को स्थानांतरित कर सकते थे, जिनमें ये बहुत बड़े ब्लॉक भी शामिल थे जिन्हें आप यहीं देख रहे हैं, जिन्हें भी स्थानांतरित किया गया था। इसलिए प्राचीन लोग इस बात में बहुत कुशल थे कि वे अपनी दुनिया को अपने लिए कैसे काम में ला सकते हैं। खैर, हम यहाँ हैं। अंतिम महान असीरियन राजा अशरबनिपाल। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनका एक लंबा शासनकाल है। उन्होंने 668 से 627 तक शासन किया। उसके पास एक लंबा शासन है और ऐसा लगता है कि वह सफल है, क्योंकि जब आप मानचित्र को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इस दुःस्वप्न का अंत कभी नहीं होगा। गहरे नीले रंग को देखो। इस बारे में कुछ बहस है कि क्या अशरबनिपाल ने एलाम को जोड़ा या एसरहद्दोन ने। मैं यह तर्क देना पसंद करता हूं कि अशरबनिपाल ने एलाम को अपने साम्राज्य में जोड़ा, लेकिन ध्यान दें कि एलाम को जोड़ा गया है और फिर मिस्र को। मैंने वह गलत किया, क्षमा करें, मैं वह भूल गया था। आइए यहां वापस जाएं और एक नजर डालें। उसने मिस्र को साम्राज्य में शामिल कर लिया, और इसलिए अब अगर मैं सिर्फ नाटक के लिए कह सकता हूं तो यहां अंतिम महान असीरियन राजा है। दुःस्वप्न जारी है। ऐसा लगता है कि यह कभी खत्म नहीं हो सकता, और देखो क्या होता है। अंतिम महान असीरियन राजा में साम्राज्य अपने सबसे महानतम अंतिम महानतम पर था। एलाम, जो सबसे पुराना जीवित साम्राज्य है, असीरियन साम्राज्य में जोड़ा गया है। वह अपनी स्वतंत्रता खो देता है। मिस्र, प्राचीन काल का सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला साम्राज्य, लगभग 3000 वर्षों तक चला। मिस्र अब साम्राज्य में शामिल हो गया। मानचित्र पर देखो, न केवल संपूर्ण उपजाऊ क्रिसेंट और अनातोलिया बल्कि संपूर्ण मिस्र भी। गुब्बारे की एक हकीकत होती है, गुब्बारा अपने सबसे बड़े विस्तार पर पहुंच गया है। अपेक्षाकृत कम समय में गुब्बारा फूटने वाला है, और फिर एक दशक के भीतर यह सब खत्म हो गया। यह अखंड पत्थर, हिंसा और बुतपरस्ती का यह भयावह समूह इतनी अचानक खत्म हो जाएगा कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो हम अशरबनिपाल के शासनकाल को देखेंगे। वह अंतिम महान असीरियन राजा है, और इसलिए हम उसके शासनकाल को देखेंगे। उसने 9 सेनाएं बनाई। वैसे एजरा 4:10 में उसे ओसनाप पर कहा गया है। क्या आप यह देख सकते हैं? यह अंग्रेजी में एक अजीब शब्द है, लेकिन यह हमें याद दिलाता है कि इन नामों को मूल भाषा में स्थानांतरित करना हमेशा आसान नहीं होता है। इस प्रकार उदाहरण के लिए यूनानियों ने अशरबनिपाल के लिए सरदाना पोलिस का आविष्कार किया। तो यह लगभग बहुत मजेदार है। अपने शासनकाल में उसने 9 सैन्य अभियान किए, जिनमें से पहला मिस्र के विरुद्ध था। तिरहाका ने एक बार फिर मेम्फिस पर कब्जा कर लिया था, इसलिए अशरबनिपाल ने आक्रमण किया और तिरहाका को हरा दिया, जिसकी स्पष्ट रूप से जल्द ही मृत्यु हो गई। तो तिरहाका एक बहुत ही प्रभावशाली न्यूबियन राजा था, जिसने खुद को मिस्र के सिंहासन पर बिठाया था। 100 साल पहले कुछ लोग सोचते थे कि अश्वेत इस तरह की चीजें करने के लिए पर्याप्त स्मार्ट नहीं थे। कोई तिरहाका बताना भूल गया। वह अश्शूरियों के लिए एक बड़ा कांटा बनने में कामयाब रहा और कुछ साहसी व्यक्ति था। हालांकि उनके उत्तराधिकारी तनुत अमुन ने भी असीरिया का विरोध किया। तो अब अशरबनिपाल एक विशाल सेना इकट्ठा करता है। उसने मिस्र पर आक्रमण किया। उसने मेम्फिस पर पुनः कब्जा कर लिया, लेकिन उसने नदी के ऊपर की ओर कदम बढ़ाया और थेब्स के प्राचीन ऐतिहासिक शहर पर कब्जा कर लिया। नहूम की किताब में इसका उद्देश्य यहूदा को चेतावनी देना था। यदि कोई अमुन या थेब्स नहीं गिर सकता, तो आप भी गिर सकते हैं। बाद में मिस्र में 20वां राजवंश शुरू हुआ और सेमिटिकस ने अश्शूरियों को निष्कासित कर दिया। इस बीच बेबीलोन में अशरबनिपाल के भाई शमाशुमुकिन ने अपने भाई अशरबनिपाल के शासन को तोड़ने का प्रयास किया। वह आजादी चाहता था। वह अपना राजा स्वयं बनना चाहता था। इसलिए वह पहले से ही सेमिटिकस को निष्क्रिय समर्थन दे रहा था और फिर बाद में खुले विद्रोह में था। तो 651 से 48 के वर्षों में अशरबनिपाल ने घेर लिया या बाबुल को घेर लिया और फिर बाबुल गिर गया और शमाशुमुकिन मारा गया और यह अश्शूरियों के लिए एक और जीत की तरह दिखता है। पूरी दुनिया को ऐसा लग रहा है जैसे यह कभी खत्म नहीं होने वाला है। 645 में उसने एलिम पर विजय प्राप्त की और सुसा को बर्खास्त कर दिया, जिससे दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक का अंत हो गया। कुल मिलाकर 645 में असीरिया अपनी सबसे बड़ी शक्ति पर था। हालांकि ऐसा मामला नहीं है। अब इससे पहले कि हम असीरिया के पतन के बारे में बात करें, मैं आपको बता दूं कि इस राजा का सबसे बड़ा योगदान विडंबनापूर्ण है और मुझे लगता है कि यह पूरे प्राचीन इतिहास की सबसे आश्चर्यजनक विडंबनाओं में से एक है। यह है कि इस राजा का मानवता के लिए सबसे बड़ा योगदान है और इतिहास निश्चित रूप से उसका साम्राज्य नहीं था, बल्कि उसका पुस्तकालय था। दूसरे शब्दों में अशरबनिपाल एक पुरातनपंथी था। वह एक राजा था जो पढ़ना लिखना जानता था और उसे मेसोपोटामिया के अविश्वसनीय इतिहास के बारे में सीखना बहुत पसंद था। वह पूरी तरह से जानता था कि मेसोपोटामिया का इतिहास हजारों साल पुराना है और वह इसमें रुचि रखता था। उसके पास कोई दुर्जय प्रतिद्वंद्वी नहीं था, इसलिए वह अपना ध्यान अपनी लाइब्रेरी की ओर लगा सकता था। अब निःसंदेह यह कोई पुस्तकालय नहीं है जैसा हम जानते हैं। यह मिट्टी की गोलियों का एक पुस्तकालय है। लेकिन उन्होंने जो किया वह यह था कि शायद पहले पुरातत्वविद के रूप में उन्होंने श्रमिकों की टीमों को उन महत्वपूर्ण शहरों में जाने के लिए नियुक्त किया जिनका अब उपयोग नहीं किया जाता था, और वे खुदाई करते थे, वे प्राचीन पुस्तकालय ढूंढते थे और वे उन्हें खोदते थे, और फिर वे गोलियां वापस अशरबनिपाल के पुस्तकालय में लाएंगे और फिर वे उनका नवसीरियन में अनुवाद करेंगे। देखिए, दूसरे शब्दों में गोलियां सुमेरियन में लिखी जाएंगी या वे अक्काडियन में लिखी जाएंगी, लेकिन वे ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें अब लोग नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने इन टीमों को अपने पेशेवरों द्वारा नियोसीरियन दस्तावेजों में अनुवाद करने के लिए गोलियों को खोजने के लिए भेजा, ताकि जब हम पहले गिलगमेश महाकाव्य के बारे में बात करें तो हम अक्काडियन में लिखे गए या पुराने में लिखे गए गिलगमेश महाकाव्य के बारे में बात न कर रहे हों। बेबीलोनियाई, हम जिस गिलगमेश महाकाव्य को पढ़ रहे थे वह नवसीरियन वृत्तांत है। इसका अशरबनिपाल के विद्वानों द्वारा नवसीरियन में अनुवाद किया गया था और यही वह विवरण है जिस पर हम काम करते हैं। तो मेरे सोचने के तरीके में यह लगभग एक विडंबना है कि जब हम इन अश्शूरियों के बारे में पढ़ते हैं जो बेहद क्रूर थे तो हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और फिर भी यह अशरबनिपाल का शासनकाल था जिसने दुनिया की पहली महान लाइब्रेरी बनाई और दी। हमारे पास ऐसे दस्तावेज हैं जो शायद हमारे पास कभी नहीं होते अगर उसने उन्हें हमारे लिए नहीं छोड़ा होता। कितनी विडंबना है ना, कि ये लोग जिन्होंने इतना कुछ नष्ट किया, इतने सारे लोगों की हत्या की, इतने सारे लोगों पर अत्याचार किया, कितनी विडंबना है कि अशरबनिपाल दुनिया के लिए अश्शूर के सारे सोने से भी बड़ा खजाना छोड़ जाएगा क्योंकि उसने अपना विश्व ज्ञान छोड़ दिया था। किसने स्वप्न में सोचा होगा कि यह अंतिम महान असीरियन राजा का कार्य होगा। खैर, यहाँ हमारी स्थिति है। आज हमारा समय लगभग खत्म हो चुका है। 639 के बाद रिकॉर्ड समाप्त हो जाते हैं और इसलिए हम वास्तव में असीरियन साम्राज्य के अंत के वर्षों को फिर से नहीं बना सकते हैं। कई अस्पष्ट राजाओं को असीरियन राजा सूची में सूचीबद्ध किया गया है, हालांकि गृह युद्ध नहीं तो संभवतः आंतरिक संघर्ष था। हालांकि हम असीरियन साम्राज्य के पिछले 20 वर्षों की घटनाओं को दोबारा नहीं बना सकते। 614 तक एक फारसी राजा, मीडिया के राजा साइक्सारिस ने अश्शूर की राजधानी अश्शूर पर कब्जा कर लिया। 612 में नीनवे का महान शहर मेड्स के हाथों गिर गया जब बेबीलोन के राजा नाबोपोलस्सर की सेनाएं युद्ध में बहुत देर से पहुंचीं। कुछ सेनाएं पश्चिम से हारान की ओर भाग गईं, जो आपको हमारी उत्तरी उर चर्चा से याद होगी, और वहां उन्होंने मिस्र की मदद से हारान में एक नया राजवंश स्थापित करने का प्रयास किया। 609 तक असीरिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, जो उस नफरत का एक अंश है जो उसने प्राचीन दुनिया भर में प्रेरित किया था। तो कुछ ही वर्षों में 300 साल पुराना साम्राज्य नष्ट हो गया। फिर कभी अश्शूर के शहरों पर अश्शूरियों का कब्जा नहीं होगा और असीरिया खो जाएगा और हमेशा के लिए खो जाएगा, क्योंकि बेबीलोनियों को अंततः अपना बदला मिल जाएगा और बेबीलोनियों के पास अंततः अपना साम्राज्य होगा। हम्मुराबी को काफी समय हो गया है। इसमें केवल एक सहस्राब्दी का समय लगता है और बेबीलोनियों का अपना अंतिम साम्राज्य होता है, और यही हम अपने अगले टेप में शुरू करेंगे जो नियो बेबीलोनियन साम्राज्य के बारे में है जिसे नबूकदनेस्सर ने प्रसिद्ध किया था। मुझे विश्वास है कि आप हमारे साथ इसका इंतजार करेंगे। हम पाठ्यक्रम के लगभग अंत पर हैं, इसलिए एक बार फिर मैं आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। यह पुराने नियम की पृष्ठभूमि पर अपने शिक्षण में डॉक्टर डॉन फाउलर हैं। यह सत्र 20 है, असीरिया का निधन।